नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।